Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
पहले तो कहा चैलाजन कुशोत्तरम और फिर ये कहने के बाद फिर क्या कहा शरीर काय स्रो ग्रीवम है मने शरीर गला ग्रीवा शब्द से क्या लोगे गला शरीर गला और सिर स्रो ग्रीवम मन ये कैसे होने चाहिए ठीक होने चाहिए ऐसा नहीं टेढ़े मेढ़े या नहीं आसन भी सही सर सहज आसन आपका होना चाहिए शरीर भी सही होना चाहिए सीधा होना चाहिए गला भी सीधा होना चाहिए और सिर भी सीधा होना चाहिए और इतना ही नहीं उसके साथ ऐसा नहीं कोई हाथ कहीं पर रख लिया जाए हाथ भी व्यवस्थित होने चाहिए यदि आप जब चिंतन करते हो चिंतन का प्रवाह हो रहा है जैसे रक्त का प्रवाह हो रहा है और जहां पर आप वजन डाल देंगे वहां रक्त का प्रवाह रुक जाएगा इसलिए संकेत किया गया कि शरीर के अंतर्गत जो विद्युतीकरण होता है जब भी हम जप करते हैं चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं बैठ करके तो शरीर के अंतर्गत एक विद्युतीकरण होता और जो विद्युतीकरण होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और उसके यदि आपका हाथ कहीं दब गया या टेढ़ा कर दिया तो वो विद्युतीकरण जिधर जाना चाहिए उधर जा पाएगा संकेत किया इसलिए यह आसन आदि पर भी विशेष बल दिया तो यहां संकेत किया वैदिकांत जमाकर आसन जमाकर के माने व्यवस्थित और जमाकर आसन फिर संकेत किया मूंद लिए दो कान कानों के मूंदने का अर्थ यह मत समझ लेना कि कानों में रुई भर दी ऐसा नहीं किंतु कानों के मूंदने का मतलब है कि कानों के तरफ जो है उन अधापतन की तरफ जो है उसकी वृत्ति नहीं है वो क्या करता उत्कृष्टता का चिंतन कर रहा है किसका चिंतन कर रहा है उस मूल का चिंतन कर रहा है किस मूल का जो हृदय के अंतर्गत जो पुरुष है और जो पुरुष कैसा है हिरण्यमय है अमृतमय है उसका चिंतन कर रहा है और जब उसका चिंतन कर रहा है तो वो तो हृदय में ही है तो उसका चिंतन किधर मुड़ गया हृदय की तरफ ऊर्ध की तरफ उत्कृष्टता की तरफ अब बाहर की तरफ उसका चिंतन नहीं जा रहा है लोग ध्यान की परंपरा बतलाते हैं एक दृष्टांत संत लोग देते बड़ा कहा एक सीधा साधा व्यक्ति था उसने कहा महाराज हमारा ध्यान नहीं लगता कहा कैसे ध्यान करते हो तो उसने बताया तो अच्छा उन्होंने पूछा अच्छा ये बताओ ऐसे तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा सबसे प्रिय तुम्हें क्या वस्तु है तो सीधा साधा व्यक्ति था गांव का व्यक्ति था उसके पास एक भैंस थी भैंस उसने कहा महाराज हमें सबसे प्रिय तो अपनी भैंस लगती है देहाती बात कह दे स्वभाव तो नहीं तो लोग कहते हैं कि रहम के भजन में होन पर ठाड़ो और हम तो अपनी भैंसिया का भजन करेंगे और दूध मिले गाढ़ो तो कहने का मतलब उससे उसकी जहां तक अपनी स्थिति है उसके अनुसार तो उसने कहा मुझे अपनी भैंस प्रिय है भैंस उसकी थी पुरानी भैंस थी लंबे लंबे उसके सींग थे फैले हुए तो उन्होंने कहा चलो यहीं से इसको शुरू किया जाए उसने कहा कि चित्त को एकाग्र करने के लिए पहले तू काम कर और क्या कर कहा तू अपनी भैंस का ही ध्यान कर जब बैठे ध्यान में तो भैंस का ही चिंतन कर भैंस का ही ध्यान कर और प्रिय वस्तु का चिंतन स्वाभाविक हो जाता तो बैठा और भैंस का चिंतन करने लगा अब भैंस का चिंतन करने लगा तो आप जानते हो गीता में पढ़ते हो ध्यायते विषयान पुंस संघस तेस उपजाए उसमें आसक्ति हो जाती मन जुड़ाव हो जाता एक जो है चिपकाव हो जाता उसकी भी वृत्ति का चिपकाव उसी भैंस में हो गया अब जो भैंस का चिंतन करते करते है ना तो क्या उसे लगने लगा अब भैंस ही वृत्ति में आ गई और भैंस ही जब वृत्ति में आ गई तो अपने को भी भूल गया और क्या चिंतन हो गया भैंस हूं भैंस हूं भैंस हूं, ये चिंतन। अब जब चिंतन कर रहा था तो गांव का गांव में रहने वाला, कच्चे मकान पहले हुआ करते थे, दरवाजे छोटे बनाते थे। अब उन्होंने कहा कि अब इसको निकाला जाए, काफी देरी हो गई। कहा अब तू बाहर निकल गया, तो उसने सुन तो लिया लेकिन कहने लगा अब निकलूं कैसे। कहा क्यों? कहा सींग इतने बड़े बड़े हो गए दरवाजे से निकल ही है? तो ये चिंतन, तो ये किससे हुआ? चिंतन के द्वारा, हमारी वृत्ति के द्वारा। हमारी वृत्ति जहां जाती है तदाकाराकारित हो जाती है, संसार के अंतर्गत जाती है तो संसाराकाराकारित हो जाती है, जिस संबंध में जाती है उस संबंध के आकार की हो जाती है। उसी वस्तु से, उसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई संबंध जब तक नहीं था तब तक हमें न सुख हो रहा था न दुख हो रहा था, और जैसे ही एक संबंध की वृत्ति बन गई तो हमें दुख होता। ऐसे ही यहां संकेत, ये तो कहने के लिए, समझाने के लिए कह दिया। तो अब जो है चिंतन करने के लिए, यदि हम मने बाहर के पदार्थों का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? तो वृत्ति बाहर की तरफ जाती रहेगी। इसलिए बाहर के पदार्थों का चिंतन न करते हुए किसका चिंतन करना है? हृदय के अंतर्गत जिसके लिए संकेत किया गया भूव्यार्थी का संकेत करते हुए कि इस हृदयाकाश के अंतर्गत हिरण्यमय पुरुष है, और जो हिरण्यमय पुरुष है तो वो मनोमय है, और मनोमय है और कैसा अमृत स्वरूप है, ऐसे उसका चिंतन करो। इस चिंतन का नाम ही है मने कान मूंद लेना, मने इंद्रियों को है उनमें जो स्राव हो रहा था उधर होकर के जो पदार्थों में जा रहे थे, बाहर वृत्तियां जा रही थी, अब वो बाहर वृत्तियां जाएंगी नहीं। तो ये मूंदने, तो आसन को जमा करके और उसका जब चिंतन होने लगा तो उत्कृष्ट का चिंतन होने लगा, उत्कृष्ट का जब चिंतन होने लगा तो जो है उधर से रुकाव हो गया। इसलिए वहां भी संकेत किया, वैठ एकांत जमा कर आसन, मूंद लिए दो कान, झीनी धुन में स्रोत्र लगाकर सुनता है नाद पिछा। तब जो वह नाद, जिसे नाद ब्रह्म कह दिया गया, तब उस ब्रह्म का जो आनंद है उस ब्रह्म के आनंद को वह सुनता है, है? तो इसलिए उसको दूसरा शब्द क्या दे दिया? निरंजन। क्या दे दिया? निरंजन। निर्गत रंजन यत्र यास्मा इति निरंजन, जहां से रंजन चला गया। और रंजन क्या है? तो रंजनम रागा, रंजन क्या है? राग। राग का नाम है रंजन। राग क्या करता है? हमको रंग देता है। रंगने का मतलब वस्त्र को जो बाबा लोग श्वेत बढ़िया शुक्ल वर्ण का वस्त्र होता और रंग देते हैं तो क्या बना देते हैं? लाल कर देते हैं। तो रंग उसके प्रत्येक धागे के कण कण में वह रंग क्या होता? चिपक जाता। ऐसे राग क्या करता है? हमें जब रंग देता है तो उस पदार्थ से हमारी भी एकता हो जाती। जो हम हैं वो न कह होकर के दूसरे हो दिखाई देने लगे, जैसे था मनुष्य और अपने को क्या समझने लगा? मैं भैंस हूं है? तो ये, तो अब निरंजन धुन को, इसका मतलब क्या है? जब एकांत में आसन लगा करके बैठ गया और बैठ करके जो है इंद्रियों की तरफ श्रावण होकर के अंतर हृदय में जो पुरुष था उस पुरुष का ही जब चिंतन करने लगा तो क्या हो गया? तो कहा उधर से राग हट गया, उधर से जो एकता थी वो उसकी समाप्त हो गई। और जब समाप्त हो गई तब जो राग से रहित जो धुनी है, जो नांद है, जो आनंद है, अभी तो हमें रागात्मक आनंद की प्राप्ति होती, संसार में जितने भी सुख प्राप्त हम कर रहे हैं वो सब रागात्मक है। राग की हमारी वृत्ति होती है वहीं हमें सुख की प्रतीति होती, और जहां रागात्मक वृत्ति नहीं होती वहां सुख की विपरीत प्रतीति नहीं। हमें कितनी भी वस्तु प्रिय हो और वही प्रिय वस्तु यदि अप्रियता में बदल जाए, तो पहले जब प्रिय थी तब राग था और तब वो सुख दे रही थी, और जब उससे अप्रियता हो गई तो वस्तु तो वही है, तो वही वस्तु क्या देने लगी? का दुख देने लगी। तो दुख वस्तु में है, सुख वस्तु में है क्या? सुख किसमें है? हमारी वृत्ति में राग और द्वेष, उस हमारे राग और द्वेष में ही क्या है? सुख विद्यमान। इसलिए यहां संकेत करते हैं कि जब राग चला गया, और राग चला गया तो राग से रहित, और राग से रहित कौन? तो पदार्थ को लेके ही राग होगा। राग से रहत वही मनोमय अमृतमय है वही पुरुष है। और वहां पर अब राग हो गया, इधर से राग हटा तो राग किधर हो गया, इधर। और ये राग जब हो गया तब वह कैसी धुनी हो गई, राग से रहत धुनी। ऐसी धुनि को वह सुनता है, ऐसे आनंद को वह सुनता है। और भी बोलते हो कि सोहम मंत्र जपे नित प्राणी बिन जुहा बिन दंत, है ना, बगैर बाणी के और बगैर दांतों के हैं, क्योंकि शब्दों को चढ़ कब होता, मन जिह्वा जब जो है वायु का स्पंदन करती है और वो वायु कभी ओठों से टकराती है, कभी दंतों से टकराती है, कभी तालू में टकराती है, तब शब्द का उच्चारण होता, तब ध्वनि होती है ना। और तब कोई शब्द हम उच्चारण करते हैं तब शब्द का उच्चारण संभव होता। लेकिन यहां क्या कह रहे कि न दांत का सहारा न जिह्वा का सहारा, और फिर भी क्या है का सोहम मंत्र जपा, वो सोहम क्या है, हैं? उसी हृदय देश तक वायु जाती है और वहीं से बाहर आती है ना। तो इसका मतलब क्या, उसके बगैर उस प्राण क्रिया का होना संभव नहीं। तो वहां जाना और फिर वहां जाकर के व्यक्त होना, बाहर आना और जीवन धारण करना, तो इसका मतलब क्या, कहा वो जो मूल है वही तो मैं। तो ये सोहम मंत्र एक तरह से इसी को सोहम सोहम करके कह देते हो। तो ये सारी चर्चा का मतलब क्या है कि यहां पर जो संकेत किया गया कि वह जो मने हृदय है, उस हृदय आकाश वाला हृदय है, उस आकाश के अंतर्गत जो पुरुष है वो कैसा हिरण्यमय है, और हिरण्यमय होते हुए वो कैसा है का मनोमय और अमृत स्वरूप है। अब ऐसे उसका चिंतन वहां जब हमें करना है हृदय देश की तरफ, और उस हृदय में ही जब उसकी स्थिति बतला रहे तो वो चिंतन कहां जाएगा, तब बाहर की वृत्तियां मुड़ेंगी। और चिंतन करना है कहां, और चिंतन भी किससे होगा, तो उसी अंतःकरण में जहां ओहस की सत्ता बतलाई जा रही है और वही अंतःकरण मन ज्ञानात्मक कह दिया गया, उसी के द्वारा चिंतन होगा, उसी के द्वारा। और चिंतन होगा तो वो अत्यंत समीप में, और जैसे ही चिंतन होगा तो जो वस्तु समीप में है और उसके लिए हम चलते हैं तो बड़े शीघ्र ही हमें प्राप्त हो जाते। और जब ऐसा चिंतन करता है तो इसलिए भू व्याहृति के अंतर्गत चार चीजें बतलाई थी, पृथ्वी लोक उसको तो हृदय शब्द से कह दिया, और पृथ्वी लोक के पश्चात फिर उसी भू व्याहृति की दूसरी जो है क्या अग्नि, फिर आदित्य, ये सब व्याहृतियां बताई, चार चार विभाग कर दिए थे। तो भू व्याहृति के अंतर्गत पृथ्वी लोक, और उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद आदित्य, और आदित्य के बाद फिर क्या बतलाया, हाँ, चंद्रमा, छंद तो वो अलग चीज, वो तो दूसरे रूम में। तो अब जो है ये क्रम से जो वहां पर बतलाए तो क्या उसका मतलब हो गया, अब भू व्याहृति का जब हम चिंतन किया तो जब समीपता जाएगी तो जो पहले पड़ेगा वही तो आएगा। तो वहां पर अब भू का इस प्रकार से जब हम भू व्याहृति को लेकर के उसका अनुचिंतन करेंगे, जो भू के अवयव बतलाए गए, तो हमारी उस भू की गति कहां होगी, पहले अग्नि में होगी, कहां होगी, अग्नि में होगी। और अग्नि भी किसका प्रतीक है, तो प्रकाश का ही प्रतीक है। ऐसी उस तेजस्विता में, ऐसे उस प्रकाश में वह फिर क्या है, तब संकेत कर दिया भू इति अग्नौ प्रतिष्ठति, इसमें संकेत किया मैंने, फिर वो जो है भू व्याहृति कहां प्रतिष्ठित हो जाएगी चिंतन के द्वारा, कहा अग्नि में प्रतिष्ठित हो जाएगी। और अग्नि में जब वो प्रतिष्ठित हो जाएगी, मैंने अग्नि में स्थित हो जाएगी, अग्नि में ठहर जाएगी, तो कहां पर ठहर गई, उसी अंतःकरण में। अब वृत्ति बाहर नहीं जा रही, अब वृत्ति उसी अंतःकरण में विद्यमान है, और उसी अंतःकरण में उसी हृदय देश में विद्यमान होते हुए किसका चिंतन कर रही है, तो मनोमयत्वादि का, अमृतत्व का, और जो है उस पुरुष का। और पुरुष क्या है तो आगे चल के बतलाएंगे, पूरी सैनात इति पुरुषा, एक तो ये अर्थ कर दिया, और वहीं कहा पूरी सैनात पूर्णा वा इति पुरुषा, जो पुरी में शयन कर रहा है, स्थित है, और स्थित होकर के शयन शब्द क्यों कर दिया, शयन शब्द का प्रयोग क्यों किया, स्थित कह देते, इसलिए किया कि वो क्रिया से रहित है, सुसुप्ति में हमारी सैन अवस्था में कोई क्रिया नहीं, तो इसलिए वहां सैन शब्द का प्रयोग किया। सारी क्रियाओं से रहत होता हुआ वो वहां पर उस पुरी में विद्यमान रहता, और क्रियाओं से रहत होते हुए विद्यमान रहते हुए और क्या करता, तो पूर्णा सबको पूरित करता है, जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयवों को पूरित करता है, माने अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से, अपनी सत्ता से, और क्या करता है, उन्हें पूरित करता है, माने उनको सत्तान्वित करता है, उनके उसके बगैर किसी की सत्ता संभव नहीं हो सकती। इसलिए पूरित करने के कारण भी उसे क्या कह दिया, का पुरुष, इसलिए उसका नाम पड़ गया पुरुष, इसलिए पुरुष कहा गया। इसलिए आप केन उपनिषद जब पढ़ते हो तो प्रारंभ में ही क्या कहा गया, चार प्रश्न किए गए हैं, तो ये जो मन है केनेसितम है प्रेषितम है, किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन जो है वो इच्छा करता, संकल्प करता है, तो केनेसितम प्रेषितम मन, ये ऐसे ही श्रोत्र के विषय में कहा, चक्षु के विषय में कहा, प्राण के विषय में कहा और मन के विषय में तो कहा। तो इस प्रकार से वहां जो प्रश्न किए गए, तो वहां आगे चल करके फिर क्या कहा, सीधे बतलाने कह देते ईश्वर के, पुरुष के, ये सब नहीं उत्तर दिया, क्या कहा, का श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषस् चक्षु है, ये सब बोले वहां, प्राणस्य प्राण, ये सब संकेत किया, जो प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु, और यहां पर श्रुति में क्या कहने जा रहे, आगे ही कहने गए, कहा मनस्पतिम चक्षुरपतिम है श्रोत्रपतिम विज्ञानपतिम, वही क्या है, कहा वही उस चक्षु का भी स्वामी है, मन का भी स्वामी है, ये सब संकेत किया। और वहां पर फिर जो है फलतर्थ बतलाते हुए फिर क्या कहा, कैसे वहां कहा कि स्रोत्र का स्रोत्र है, तो क्या कह दिया, ये न मनसा न मनुते एन आहुरम मनो मतम है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम इदम उपासते, जिसकी तुम उपासना करते, कहा वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म कौन है, का जिसकी उपासना तुम कर रहे हो, और जो उपासना करने वाला तुम्हारा मन है, जो उसका चिंतन कर रहा है, इसके अंतर्गत जो चिंतन करने वाला मन है वो उसके चिंतन करने में समर्थ, किंतु मन को भी चिंतन की सामर्थ्य देने वाला, मन को भी मननत्व की सामर्थ्य देने वाला जो है वही क्या है, वही ब्रह्म है, और वही यहां पर उसको मनस्पतिम चक्षुपतिम इत्यादि करके कह रहे। तो इस प्रकार से यहां बताया ऐसा जो पुरुष हो, और ये भू व्याहृति के द्वारा जब हम चिंतन क्रम से एक एक और उनके अवयवों को लेकर के चिंतन बतलाया, और जब इसका चिंतन हम करते हैं तो इस चिंतन के द्वारा तब क्या होता, तो देखो इसको क्या कहते हो, भूर्भुव स्व बोलते हो मंत्र, तो गायत्री मंत्र भी कहती है, तो हाँ केवल व्याहृतियों को उठाया। अब वो जो गायत्री मंत्र है तो उसी को गायत्री माता भी कह देते, वैसे तो वो सच्चिदानंद एको देवा सर्वभूतेषु करके संकेत उसका, लेकिन उसी को माता शब्द से भी कह दिया। माता क्यों कह दिया, जो जन्म देने वाली भी और पोषण करने वाली, तो समस्त को पोषण करना और जन्म देना किसका काम है, का माता का काम, इसलिए उसे माता गायत्री माता करके कह देते, गायत्री मंत्र कह देते हो, वैसे गायत्री छंद है। अब जो है यहां पर भी संकेत ये करते हैं, यहां पर भी क्या है, सबका पोषण करने वाला, मन आदि को जन्म देने वाला, सत्ता देने वाला कौन है, तो कहा वही है, इसलिए उसी की तरफ संकेत किया। ऊपर नाल है और नीचे उस कमल का मुख है, हृदय का मुख है। तो अब जब इस प्रकार से भू व्याहृति के अर्थ को हम समझेंगे और अर्थ के अनुसार उसका चिंतन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तो क्या होगा, तो ये ओंकार की उपासना का प्रारंभ होगा। क्या होगा, ओंकार की उपासना का प्रारंभ। और जब इस प्रकार से उपासना होती है तो फिर क्या होगा, तो ओंकार के प्रथम अंश को हमने ग्रहण किया, अकार मात्र की व्याहृति को ग्रहण किया, उसका चिंतन किया, तो ओंकार नाम ही क्यों पड़ा, ध्यान देना, ओंकार क्यों कहते, कहीं प्रणव कहा, कहीं ओंकार कहा, इस ओम का ओंकार नाम क्यों पड़ा, तो संकेत किया गया, ऊर्ध्वम उन्नयति प्राणान इति ओंकारः, जो हमारे प्राणों को ऊर्ध्व करता है, ऊर्ध्व की तरफ ले जाता है, उन्नयत है, उन्नयति प्रेषयति इत्यादि करके, जो हमारे प्राणों को ऊर्ध की तरफ ले जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ओंकार कहते हैं। ऊपर की तरफ ले जाने वाले को हम ओंकार कहते हैं। या प्राणानामयति प्राणमयति इति प्रणव, प्रणव नाम क्यों है, जो हमारे प्राणों को नम्री भूमि बना देता है, झुका देता है, संयत कर देता है, उसका नाम क्या है, प्रणव। इसलिए इस ओम का ही नाम क्या है, प्रणव भी है, ओंकार भी है। तो वही हम संकेत करते हैं कि जब व्याहृति का प्रथम जो स्वरूप है, प्रथम व्याहृति है, उसका हम चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन के द्वारा हमारी उस भू नाम की व्याहृति को चिंतन जब करेंगे तो वो हमें कहां प्रतिष्ठित करेगी, तब संकेत किया अग्नौ प्रतिष्ठति, इसी के अंतर्गत है, कहां प्रतिष्ठित करेगी, कहा अग्नि में, उस तेज में, ऐसा तेज हमारे में अंदर आएगा, ऐसा बल हमारे अंदर आएगा, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर आएगा। और जब ऐसा बल ऐसा ज्ञान आएगा तो जब हमें किसी विशेष पदार्थ का ज्ञान हो जाए तो सामान्य पदार्थ की इच्छा होगी नहीं, तो हृदय के अंतर्गत जब वो पुरुष जो हिरण्यमय है, अमृतमय है, और उसका जैसे ही हमें ज्ञान होगा, अग्निमयत्व में प्रतिष्ठित होना माने उसका ज्ञान होना, और ऐसा जब ज्ञान होगा तो हमारी प्रियता भी उसी से हो जाएगी, और प्रियता जब हो जाएगी तो हमारा राग भी उसी में होगा, और राग भी जब होगा तो आसक्ति भी उसी में होगी, और जब उसमें आसक्ति होगी, उसमें एकत्व होगा, तब आगे की व्याहृति का चिंतन फिर कर रहा। तो इस प्रकार से यहां कहा सो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् नयम पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः, ये संकेत किया। अब उस चिंतन की प्रक्रिया को बतलाते हैं, प्राण इत्यादि को लेकर के किस प्रकार से उन्नयन होता है उस प्रक्रिया को, और कहा नाल ऊपर है तो उसको लेकर के संकेत करते हैं अंतरेण तालुके। अब जब ऐसा हृदय से चिंतन हुआ, और यही मान लो अब सामान्य रूप से ऊपर की तरफ हुआ, तो ऊपर की तरफ क्या है, हमारा गला आदि है, सिर आदि है, तो अब जब जो है चिंतन, अब जब इधर को मुड़ गया और इधर को चिंतन मुड़ गया तो संकेत या एक रूपक दे रहे हैं हम मने अंतरेण तालुके। तब वो चिंतन की धारा, वो अमृत का स्राव और आता है और कहां जाता है, कि तालु में जाता है, और दो तालु हैं, उन तालुओं को ऊर्ध तालु और अधो तालु, ठीक है ना, उस तालु के मध्य में एक जैसे जीव ये है वैसे एक छोटी सी जीव लटकी हुई है ना, मांस का पिंड लटका हुआ, ठीक है ना, स्तन की तरह से जो लटका हुआ है, संकेत करते स्तन एव आवल अवलंबते, तो वो जो लटका हुआ है और उस तालुओं से होकर के और सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए वो चिंतन कहां से जाए, सुषुम्ना, वैसे तो सुषुम्ना नाड़ी ही कह दी, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से होकर के इसका भी मतलब यदि लिया जाए तो क्या, सुषुष्ठु, सुषुष्ठु या शोभनी है ना, शोभनी सुष्ठु या कांतिमय है, क्या मन सुषुम्ना है, कौन सा मन, अब कैसा हो गया, सुष्ठु मन हो गया, जब उसने भू नाम की व्याहृति का चिंतन किया तो उससे मन में क्या आ गई, था तो कांत रूप लेकिन अब और उसमें चिंतन करने के कारण उसमें क्या आ गई, और एक कांति आ गई, दूसरी चीज और मिल गई तो और उसकी वृद्धि हो गई, अब जब आ गई कांति तो और सुषुम्ना, तो सुषुम्ना नाड़ी भी ले लो और सुंदर मन भी ले लो, सुष्टु मन भी ले लो, समीचीन मन, और वो जब है फिर क्या है, फिर कहने लगे जैसे सुषुम्ना नाड़ी में योगी बतलाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी से वो ध्याता जो है ध्यान करता हुआ उसकी चिंतन की वृत्ति कहां जाती है, तो कहने लगे ऊर्ध होते हुए, ऊर्ध्वता होते हुए और तालु में जाती, दोनों तालुओं के मध्य में जाती है, और दोनों तालुओं के मध्य में जाकर के जो वह मांसपिंड की तरह से लटका हुआ उसके बीच से होकर के जाती, और उसके बीच से होकर के जाते हुए तो यहां बतलाएंगे केशांत करके शब्द प्रयोग किया, केशांत माने केशों का जांत, माने केशों का मूल, जहां केशों का मूल है वहां पर मूर्धा, और उस मूर्धा के को जो है चीर करके, तो कपाल शब्द का प्रयोग किया, उन कपालों को चीर करके वो निकलता, और चपारकों को चीर करके निकल जाता है, तो ये संकेत वहां योगी के लिए किया, वही यहां भी संकेत करते, वही यहां संकेत करते हुए कहा अंतरेण तालुके, दोनों तालुओं के मध्य से होते हुए, अब आगे चर्चा कर देंगे, समय हो गया ओम।